आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक भजन संहिता से अध्ययन करें। आज हम भजन 1 से शुरुआत करेंगे। कृपया अपनी अपनी बाइबल खोलें। भजन संहिता की पुस्तक को 5 भागों में बांटा गया है। वास्तव में ये इसराइलियों की गीत की पुस्तक है। वे इन भजनों को गाते थे। भजन संहिता की पुस्तक में भी बहुत भविष्यवाणियां हैं। पत्रस ने हमें बताया कि राजा दाऊद एक नबी था और वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता था। उसने जो कहा वो मसीह के आगमन की भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह में पूरी हुई। भजन संहिता में बहुत से भजन हैं जो मसीही भजन कहलाते हैं। ये वे भजन हैं जो यीशु मसीह से सीधा संबंध रखते हैं। भजन संहिता के 5 भाग हैं और उनका अंत भी महिमा गान से ही होता है। भजनों का पहला भाग भजन 1 से 41 तक, दूसरा 42 से 72 तक, तीसरा 73 से 89 तक, चौथा 90 से 106 तक और पांचवा भजन 107 से 150 तक है। भजन संहिता के अधिकांश भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए थे। कुछ भजनों को आसाफ ने लिखा था और कुछ मूसा के द्वारा लिखे गए थे, लेकिन वे सब इसराइल के वंशजों के भजन थे और इसराइल के बच्चों के गीत भी थे। वे मानव स्वभाव का वर्णन करते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के लिए कैसा तड़पता है, वो परमेश्वर से संबंध बनाने का प्रयास कैसे करता है। इस प्रकार वे मनुष्य की भावनाओं के प्रत्येक रूप को दर्शाते हैं। ये कविताएं हैं, परंतु जैसे पहले बताया जा चुका है कि इब्रानी कविता में तुकबंदी के शब्द या वाक्य नहीं होते, ना उनमें कोई लय होती है। वे समानांतर विचारों या विपरीत विचारों की जुगलबंदी होती है। बहुत से भजन वर्णमाला के अक्षरों पर चलने वाले भजन कहलाते हैं। जब वे भजन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वे ऐसे भजन हैं जिसमें हरेक पद आगे वाले इब्रानी अक्षर से आरंभ होते हैं। भजन 119 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर भी आप देखेंगे कि करीब 8 पद इब्रानी भाषा के पहले अक्षर आलेफ आ से आरंभ होते हैं, फिर बेत ब से, फिर डालेत द से और गिमेल ग से, और इसी तरह वो आगे बढ़ता है। इस तरह हम इब्रानी अक्षरों पर रचे हुए भजन 119 को देखते हैं। ये बाइबल का सबसे लंबा अध्याय भी है। आइए भजन संहिता 1 का अध्ययन शुरू करें। भजन 1, पहला भजन धर्मी और अधर्मी मनुष्यों के बारे में है। इसमें विपरीत विचार प्रस्तुत किए गए हैं। ये विपरीत विचार शैली शायद पहले और अंतिम शब्द द्वारा बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई है। धर्मी जन के लिए आशीष और अधर्मियों के लिए विनाश है। भजन 1 पद 1, क्या ही धन्य है वो पुरुष। धन्य शब्द का इब्रानी भाषा में अर्थ है ओह कितना आनंदित। सबसे पहले हम इस आनंदित मनुष्य के लिए भजन रचने वाले के नकारात्मक प्रस्तुतीकरण को देखते हैं। भजन 1 पद 1 में आगे लिखा है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहां हम एक ऐसी अवस्था को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पहले मनुष्य दुष्टों की युक्ति पर चलना आरंभ करता है, फिर वो अपने आप को दुष्टों के दल में खड़ा पाता है, अंत में वो घृणा का पात्र बनकर दुष्टों की संगति में बैठा होता है। ये एक नकारात्मक पक्ष है। धर्मी मनुष्य ऐसा नहीं करता, परंतु इसके विपरीत चाल चलता है। भजन 1:2। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। नकारात्मक भाव में धन्य मनुष्य वो है जो अधर्मियों की युक्ति पर नहीं चलता, लेकिन सकारात्मक भाव में वो यहोवा की युक्तियों पर चलता है। वो रात दिन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। इसका परिणाम होता है कि भजन 1:3, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। इसका विपरीत विचार यह है कि वो पेड़ जो सूखी भूमि में लगाया गया। ये एक बड़ी रोचक बात है कि बिना ऋतु के फल के बारे में जो कभी न बढ़ता है और न पकता है। आप यदि तरबूज के बीज अगस्त में लगाएं तो क्या होगा? आप उसी समय तरबूज खाते भी हैं, बेल बढ़ सकती है और तरबूज आ भी जाएंगे तो भी वो बेमौसमी फल है। वो कभी न पकेगा, वो सदा हरा ही रहेगा। कुछ लोग परिपक्वता को कभी प्राप्त नहीं करते, वे कभी अच्छे पक्के फल नहीं लाते। यीशु ने बताया था कि अलग अलग भूमि पर गिरे बीजों का विकास अलग अलग तरह से होता है। कुछ सड़क के किनारे गिरे और पक्षियों द्वारा तुरंत चुग लिए गए। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, वे कुछ समय के लिए उगे परंतु कभी फल नहीं ला पाए। वे बढ़ नहीं पाए क्योंकि उनकी जड़ें गहराई में नहीं थी। जो कांटों में गिरे थे वे उगे, लेकिन झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और वे फल नहीं लाए। अर्थात जीवन की चिंता, धन का धोखा, दूसरी चीजों की लालसा आदि। सिर्फ वे बीज जो उपजाऊ भूमि पर गिरे अच्छा फल लाए, अर्थात 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। यीशु ने कहा, तुम्हारे फल लाने से मेरे पिता की महिमा होती है। बाद में यूहन्ना के 15 अध्याय में उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारा अभिषेक किया है कि तुम फल लाओ, ताकि तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर के संतान होने के नाते हम में फल लाने में रुचि होनी चाहिए। हमें फलवंत होना चाहिए। हमारी रुचि ये होनी चाहिए कि हम ऐसा फल लाए जो सदा बना रहे और जीवन के अंत तक रहे। सेवकाई में प्रमुख चुनौती ये होती है कि आपके कार्यों से नष्ट न होने वाले फल उत्पन्न हो। इसकी परख प्रायः ये होती है कि सेवक के फल बने रहे। एक पेड़ के समान जो अपने मौसम में फल लाता है, उसके पत्ते भी नहीं झड़ते, उसके जीवन में यौवन रहता है, वो सदा बहार रहता है, वो जो भी कार्य करे समृद्धि ही पाता है। वो मनुष्य ऐसा क्या करता है? वो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर ने हमें आनंदित रहने के नियम दिए हैं, समृद्धि के नियम दिए हैं, नियम जो व्यवस्था में लिखे हैं। वो जिस काम को करेगा समृद्धि होगा। मूसा ने यहोशु को कार्यभार सौंपा और कहा, यहोशु पहला अध्याय 8 पद, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित से न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ध्यान देना, वचन में बने रहना और परमेश्वर की व्यवस्था अपने चित से हटने न देना, तब तू धनी हो जाएगा, अच्छी सफलता पाएंगे। यही बात भजन एक में कही गई है। यहां विपरीत विचार दिखाए गए हैं। यही इब्रानी काव्य की शैली है। भजन एक पद 4, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अब ये अभिव्यक्ति पूर्व कथित वाक्य के विपरीत है, अर्थात वो वृक्ष जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जौ या गेहूं के गाने के बाद दानों के साथ भूसी भी रहती है, इसलिए वे उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां तेज हवा हो, वहां वे उसको हवा में ऊपर फेंकते हैं और हवा भूसी को उड़ा देती है और दाना नीचे आ जाता है। वहां के लोगों के लिए ये एक सामान्य दृश्य होता था। इसी तरह अधर्मी जन भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। भजन एक पद 5 और 6, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा।